Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी पूरी सीरीज चलती आ रही है एक्सपेरिमेंट्स विद राजयोगा मेडिटेशन में, जिसके अंदर हम धीरे धीरे रिलेशनशिप मैनेजमेंट सीखते जा रहे हैं। इस जर्नी में डॉक्टर सतीश गुप्ता जी हमें काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशंस दे रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है कि किस तरह से यंग एडल्ट्स की ज़िंदगी में परिवर्तन लाया जाए और उन्हें सक्सेसफुल बनाया जाए हर तरह से। इसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति ब्रदर, वेलकम टू आवर शो। डॉक्टर साहब, हमने अभी तक की बातें जो की थी वो थी तकरीबन टीनेजर्स तक। अब हम बात कर रहे हैं उन बच्चों की जो कि यंग एडल्ट्स हैं, उनकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो मेजर डिसीजन होता है वो है करियर का। तो आपके हिसाब से सबसे बेसिक टिप्स जो आप अगर हमें दे सकें जिससे वो अपनी करियर को सही डिसीजन ले पाए, वो अगर आप हमें बता सकें तो बहुत अच्छा होगा।
ये जो 16 साल की एज है, लगभग 15-16 साल की जो एज है,
हाँ जी,
बच्चा 10वीं क्लास पास करता है ना, बाय दैट टाइम ही बिकम्स 15 और 16, तो वो अब उसको एक करियर चूज करना होता है। तो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती है, माँ समझती है मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगी, फादर समझते हैं मैं अपने बच्चे को इंजीनियर बनाऊंगा। अब एक बच्चा है और दो चॉइसेस हैं, तो क्या होता है कि बच्चे को माँ बाप अपनी बातें फोर्स करते हैं, बच्चे से नहीं पूछते हैं वो क्या बनना चाहता है। माँ बाप अपने लिए सोचते हैं कि उसका बच्चा ये बना डॉक्टर, तो मेरा बच्चा भी डॉक्टर बनना चाहिए। तुम्हारा बड़ा भाई डॉक्टर बना है तो तुम्हें भी डॉक्टर बनना है। तो मतलब हम क्या बच्चे को नेग्लेक्ट कर देते हैं, बच्चे को, या सपोज वो यंग एडल्ट जो डेवलप हो रहा है, और मैंने बताया कि प्यूबर्टी के बाद 11 साल के बाद उसकी अपनी चॉइसेस बन जाती हैं, उसके अपनी इमेजिनेशंस होते हैं, अपने बारे में उसका एम होता है लाइफ का।
करेक्ट।
तो वो कुछ सोच रहा होता है, कंफ्यूज भी होता है कि करूं ये करूं तो ऐसा, ये करूं तो ऐसा, ये तो कंफ्यूज भी, ऐसा नहीं कि डेफिनेटिव नहीं होता है। तो यहाँ बहुत केयरफुल गाइडेंस की आवश्यकता है।
करेक्ट।
नर्चर की आवश्यकता है, बच्चे को पूछने की आवश्यकता है, बेटा तुम ऐसे क्या चाहते हो, कैसे चाहते हो तुम? अच्छा पापा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो वो डॉक्टर से, उसको अगर पेरेंट्स डॉक्टर है तो डॉक्टर के बारे में उसको सजेशन दें, या किसी अच्छे डॉक्टर्स के साथ उसका जो
connection
उससे कनेक्शन जोड़े,
exactly.
So that he or she is in the right mode, ना?
Yeah.
मतलब ऐसे कई बार डॉक्टर्स ऐसे उसको सब डॉक्टर बनना चाहता है बच्चा, किंतु वो उसके जो जिस डॉक्टर से मिलाते हैं वो डॉक्टर्स के बारे में डिस्करेज कर देता है उसको। ऐसा भी होता है कि उसकी इच्छा अंदर को अंदर मार देते हैं
जी।
वो अपने एक्सपीरियंस पे थोप देता है। हमें बहुत केयरफुल चूज करना पड़ेगा अपने बच्चे को देखते हुए, उसके नेचर को देखते हुए, और कभी अपने बच्चे कंपेयर ना करें दूसरे बच्चों से कि देखो वो बच्चा तो कितना अच्छा हो गया, वो देखो टॉप किया, तुमने तो टॉप नहीं किया, तुम्हारे तो नंबर कम आए, उसके नंबर ज्यादा। इससे बच्चे की हिम्मत टूटती है। कभी कंपेरिजन ना करें, और बच्चे को अच्छा नहीं लगता है तो बच्चे को लगता है कि मेरी माँ मेरे फादर उसको लाइक करते हैं बच्चे को,
मेरे
को
लाइक करते हैं,
मुझे लाइक नहीं करते हैं क्योंकि मेरे नंबर कम आए हैं, उसके उसको ज्यादा लाइक कर रहे हैं।
जबकि हम एज अ टीनेजर, सॉरी हम एज अ एडल्ट, यंग एडल्ट, हम आधी ऑलमोस्ट हाफ जर्नी जो हमने अभी तक तय की है उसमें पेरेंट्स को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं।
यस, वो हमारे रोल मॉडल्स होते हैं,
रोल मॉडल्स होते हैं। और वही रोल मॉडल्स अगर हमें बोले कि नहीं आपसे ज्यादा बेटर हमें बाजू वाले का बच्चा लगता है, तो वो कितना डिप्रेसिंग होता है, ये वो सोच नहीं पाते, वो एज अ पेरेंट वो नहीं समझ पाते।
आई थिंक इसमें हमको बहुत ही सोच समझ के बच्चे से बात करनी चाहिए
जी।
बच्चे को मैंने बताया 11 साल की उम्र के बाद वी शुड ट्रीट द चाइल्ड एज ए फ्रेंड, नॉट एज ए बच्चा समझ के नहीं बात करनी चाहिए। जो हम सोच अधिकतर गलती करते हैं, हम बच्चे को छोटे माँ फिर छोटे बच्चे जैसे ही दिखती रहती है उसको, हर समय ओवर प्रोटेक्टिव होकर उससे बिहेव करती है, वो गलत होता है ना।
करेक्ट।
कई बार फादर भी मतलब बहुत ज़्यादा उसको डोमिनेंट होकर उससे बातचीत करते हैं, वो गलत होता है। तो मदर फादर दोनों को ही एक बहुत ही फ्रेंडली एटीट्यूड से बात करनी चाहिए, उसकी बात, उसका व्यू पॉइंट, उसके सामने 4-5 ऑप्शन रख, वो खुद अपनी ऑप्शन रखे, वो पेरेंट्स के सामने और ऑप्शन रखे, और फिर उसको क्रिटिकली एनालाइज करे किया जाए। और बच्चे को उसमें चांस दिया जाए कि बेटा तुम क्या चाहते हो, अब तुम क्या समझते हो, इसके पॉइंट्स क्या फेवर में, इसके पॉइंट्स क्या फेवर में, अब मुझे आप चूज करके बताओ आप क्या करना चाहते हैं, मैं आपके साथ हूँ, हम दोनों आपके साथ हैं।
हाँ जी।
तो पेरेंट्स को मतलब बच्चे से 3-4 उसकी ऑप्शंस जो वो बनना चाहता है उसके प्लस पॉइंट्स या नेगेटिव पॉइंट्स बच्चे को बोलना चाहिए, बेटा तो आप क्या समझते हैं, और फिर इम्पोर्ट सजेस्टिव वे में, मतलब एक नॉट ऑर्डर के रूप में, सजेस्टिव वे में पेरेंट्स को बात करनी चाहिए बच्चे से कि आप बेटा इसकी इसमें ये मेरे अनुभव से ऐसा है
जी।
और भी मैं 2-4 लोगों से बात करता हूँ जो ने कार्य किया है, बजाय के बच्चे को उसके बाद भेजें, आप उनसे मिलें।
ओके।
सपोज डॉक्टर से मैंने अभी बात की, आपका बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, तो आप बच्चे को डॉक्टर के उस डॉक्टर के पास ना भेजें, आप उससे मिलें और उसके कुछ प्लस एंड नेगेटिव्स ले लें।
ओके।
और बच्चे के साथ ऑनेस्टली उनको रखें।
ओह।
राइट, क्योंकि बच्चे के साथ कई दूसरे लोग होते हैं उनको इम्प्रेस कर लेते हैं दूसरे तरह से,
इन्फ्लुएंस कर लेते हैं,
उस आप इससे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, आप आकर के बच्चे के सामने जो इम्पोर्टेंट बात है वो रखेंगे, नेगेटिव बात को छोड़ देंगे।
एग्जैक्टली।
तो वो बात आप बच्चे को उतना ही दें, उतना ही एक्सपोज करें जितना जरूरी है।
ओके।
राइट, तो ये कभी बच्चे को दूसरे के पास ना भेजें कि उससे जाके मिल के आ जाते हैं, तुम उससे जाके मिलना, उससे जाके मिलना, बच्चा और ही कन्फ्यूज हो जाता है। तो आपको अपने बच्चे को खुद रियर अप करना है, खुद आपको अपब्रिंगिंग करनी है, तो आप बच्चे को बच्चे के लिए प्रोटेक्टर बने, तो ये हमें देखना जरूरी है। अगर हम उसमें स्पेस दें बच्चे को, उसकी बात को समझेंगे, और यूजुअली माँ को देखना चाहिए, माँ कई बार गड़बड़ करती है।
अच्छा, वो
फादर कई बार गड़बड़ इतना नहीं करते।
डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं इस चीज को लेकर के ही एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमें ऐसी कंडीशनिंग मिली है आज तक, खास करके इंडियन फैमिलीज में ये बहुत कॉमन है कि एक पेरेंट बहुत ही लीनियंट होता है और दूसरा पेरेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। जब ये कॉम्बिनेशन साथ में आता है तो बच्चा फिर एक से बहुत क्लोज हो जाता है और दूसरे से बहुत डरता है, और इस चीज़ को बहुत नेचुरली लिया जाता है कि ये तो ज़रूरी है ताकि बैलेंस क्रिएट हो सके और बच्चा सही सही अपब्रिंगिंग से आगे बढ़े। मुझे आई डोंट सपोर्ट दिस, बट आपका क्या कहना है, क्योंकि अगर आप, क्योंकि यू आर सो एक्सपीरियंस्ड, तो आप सही राय दे पाएंगे।
नहीं, इसमें दोनों को ही बैलेंस होना जरूरी है।
Okay.
जो लीनियंट, एक लीनियंट और एक पोस्ट्रिक्ट, ये दोनों ही गलत हैं।
अच्छा।
दोनों ही पेरेंट्स को देखना चाहिए कि हम बैलेंस बिहेवियर बच्चे से करें ताकि बच्चा दोनों पिलर्स पे खड़ा रहे। राइट, अगर एक पिलर ऐसा हिल रहा है और एक पिलर स्टेबल है तो भी प्रॉब्लम है ना। तो बच्चे की लाइफ स्टेबल होगी तभी हो सकती है जब पेरेंट्स दोनों स्टेबल हो, दोनों ही बैलेंस्ड हो
जी।
और दोनों बच्चे के सामने कभी आपस में कंफ्यूज ना हो। कई बार ये देखने में कि बच्चे के सामने बच्चे को कुछ बोलना है तो फादर कुछ कह रहे हैं, माँ बीच में इंटरेक्ट करना शुरू कर देती है, माँ उसके फेवर में गलत बोलना शुरू कर देती है, ऐसे मेरा बच्चा नहीं, ऐसे नहीं करेगा, ये ऐसा नहीं करेगा,
वो दोनों ही झगड़ने लगते हैं उस।
हाँ, फादर मदर ही झगड़ना शुरू कर देते
हैं। करेक्ट करेक्ट।
तो बच्चा और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए जब भी बच्चे से बात करनी है पहले पेरेंट्स आपस में बात कर लें कि हमें बच्चे से क्या कहना है और किस तरह से कहना है, और हमें बीच में इस तरह की बातें नहीं लानी है जो कि बच्चे को लगे कि ये दोनों कंफ्यूज्ड हैं और आपस में ही लड़ रहे हैं।
और मुझे लगता है डॉक्टर साहब, हार्मनी जो एक चीज होती है ये बहुत जरूरी होती है फैमिलीज के अंदर।
राइट।
खास करके जब पेरेंट्स की बात होती है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो दोनों, जैसे आपने अभी कहा कि बैलेंस होना जरूरी है, ये बात को मैं भी एकदम सहमति दूंगी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हम शायद बहुत गुस्से में होते हैं, शायद अगर बच्चे ने गलती कर दी है कोई, तो जैसे अगर जैसे बचपन में कई बार ऐसी आदतें होती है कि चोरी कर लेते हैं बच्चे, छोटी आदत है लेकिन घर की छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि उन्हें लगता है कि अरे मुझे ये स्पेसिफिक चीज़ चाहिए इसके लिए मैंने इतने पैसे चोरी कर लिए, लेकिन ये बात है तो गलत, एथिकली भी गलत है, लेकिन स्ट्रिक्ट अप्रोच रखना किस हद तक सही है या उसको लीनियंटली लिया जाए, बिकॉज एंड पेरेंट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि उस सिचुएशन के साथ डील कैसे किया जाए, तो ऐसे में आपकी क्या राय है?
देखिए, जब भी बच्चे कुछ गलत करते हैं तो हमें उनको ये देखने को गलती को समाना चाहिए, है ना, उसको बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए।
ओके।
बच्चा कुछ भी गलती करता है और हम भी गलती करते हैं, बड़े होकर भी गलती करते हैं, तो बच्चे तो अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में है, वो ज्यादा गलती करेंगे।
करेक्ट।
एक्सपेक्ट करना चाहिए हमको, बहुत ही उसको बहुत ही शांति से धीरज के साथ उसकी बात समझनी चाहिए कि बच्चा ने ऐसा क्यों किया और उसके पीछे रीजन क्या था, उसकी साइकी क्या थी, उसकी इमोशंस क्या थे उसके पीछे, और उसको फिर समझ के उसके फिर अल्टरनेटिव वेज हमको बताने चाहिए बच्चे को कि बेटा इस तरह से ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इस तरह से समझाना चाहिए। बहुत ठंडे दिमाग से समझाना चाहिए। हम गर्म दिमाग समझाते हैं बच्चे को, उल्टा लगता है और वो फिर उसको रिएक्ट करता है, तो हमको नहीं करना चाहिए। बाकी यहाँ मैं ओवरऑल ये जो सिचुएशन सारी जो हम बात कर रहे हैं, जैसे पेरेंट्स एग्रेसिव हो जाते हैं, आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, बच्चे कुछ गलत रास्ते पर जाने लगते हैं
जी।
तो इसमें मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स अगर मेडिटेशन करते हैं, राजयोग का मेडिटेशन करते हैं और सही ढंग से करते हैं, सही विधि से करते हैं, है ना। और मैंने पहले भी डिस्कस किया राजयोग का मेडिटेशन क्या है, रियलाइजिंग द ट्रूथ, लिविंग द ट्रूथ, बीइंग द ट्रूथ, राइट। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों के दोनों, मदर फादर दोनों के दोनों मेडिटेशन करते हैं और सत्य के साथ जीते हैं
जी,
ABCD, मैं आत्मा हूँ, ये पति भी आत्मा है, या पति समझे ये मेरी वाइफ है वो भी आत्मा है, और ये बच्चा जो है वो भी आत्मा है, या बच्चा या बच्ची ये भी आत्मा है, और हम सब एक पिता के संतान है, बाय नेचर हम पीसफुल हैं, बाय नेचर हम शांत हैं, बाय नेचर हम लवफुल हैं, बाय नेचर हम लवफुल माना हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं एज इट इज विदाउट बींग जजमेंटल, राइट। शांत माना वर्तमान में जीना, ना पास्ट का चिंता ना भविष्य की चिंता, राइट। और वर्तमान में भी सत्य में जीना, मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, हम एक पिता के संतान हैं, और हम अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं इस जन्म में। मैं माँ का रोल प्ले कर रही हूँ या बाप का रोल प्ले, और बच्चे का रोल प्ले कर रहा है, और हो सकता है पिछले जन्म में हम अपोजिट हों,
हो सकता है,
हो सकता है, राइट, होगा ही अपोजिट होगा,
बिल्कुल
राइट। तो मतलब बेसिक क्या है, ये एक रोल प्लेइंग है जिसमें मुझे अपना रोल बहुत अच्छा निभाना है
जी।
तो ये अगर हम इस तरह से करते हो ड्रामा, डी फॉर ड्रामा, मतलब ये अगर पता है ड्रामा में हम जो रोल निभाने जा रहे हैं वो रोल हमारा कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार है, वो बच्चा को जो बनने वाला वही बनेगा,
करेक्ट,
हमारे सोचने से नहीं बनेगा, पर हमें फिर भी गाइड करना है, अपने रोल को अच्छे से अच्छा निभाना है। तो अगर इस ज्ञान को हम सही ढंग से यूज करते हैं तो हमारे अंदर वो स्टेबिलिटी आती है, धैर्यता आती है, पेशेंस आती है, हमारे अंदर वो मधुरता आती है, हमारे अंदर वो समाने की शक्ति आती है, हमारे अंदर वो सहन करने की शक्ति आती है, और बच्चा क्या चाहता है वो हमें रखने की शक्ति आती है। और एक दूसरी बात से फायदा क्या होता है, जैसे हम लोग जो इन तीन थॉट्स को अगर हम इंटेंसली करते हैं, जो मेडिटेशन वाले थॉट्स को
जी,
तो हमारी भावनात्मक परिवर्तन, हमारे इमोशनल चेंज होते हैं, और इसको लंबा समय करने का अनुभव हमें होता है, तो हमारा एटीट्यूड बदल जाता है दूसरे व्यक्तियों के प्रति, चाहे बच्चा हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो
जी।
तो वो एटीट्यूड बदलने से आपामंडल बड़ा होता है, तो हमारे घर का वायुमंडल ही शांत हो जाता है, लवफुल हो जाता है, हैप्पी हो जाता है, और उस वातावरण में बच्चा भले बाहर कुछ भी करके आया हो, उसके घर का वातावरण बहुत सूदिंग लगता है, बहुत पीसफुल, बहुत लवफुल लगता है, भले किसी ने उसके पेरेंट्स के बारे में उसको गलत कहा हो, क्योंकि जब वो घर में आएगा तो अपने पेरेंट्स को अपोजिट पाता है। बाहर कितना भी टेंस बच्चा आया हो, घर में आते उसे शांति महसूस होती है, प्यार महसूस होती है, खुशी महसूस होती है, तो वो जो है कम्फर्टिंग वातावरण लगता है। तो अगर हम ऐसा करें, और मैंने कहा बच्चे को भी हम 3 से 11 साल की उम्र में मेडिटेशन सिखा दें, तो बच्चा खुद अपनी एक रीजनिंग अच्छी सीख जाता है, बैलेंस रीजनिंग सीख जाता है, उसके अंदर अपने आप ही बैलेंस रीजनिंग आने लगती है, और रिगार्ड देना भी उससे आने लगता है, पेरेंट्स की बात को रिगार्ड देना। सबसे बड़ी बात क्या होती है बच्चों को, ये जो उम्र के बच्चे 16-17 साल की उम्र के बच्चे, 18 साल के बच्चे, ये अपने पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं।
This is so true.
तो वो अपने, क्योंकि उनकी गलतियां देखते हैं, उनको रोज उनके झगड़े देखते हैं, तो उनको रेस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं, उनको आदर देना छोड़ देते हैं, और उनको मतलब उनका उनको टीज करने लगते हैं कई बार, तो टॉन्ट करने लगते हैं ना, कि तुम ही अपना सोल्यूशन तुमसे नहीं होता, मेरा क्या सोल्यूशन करेंगे,
करेक्ट।
तो वो इस तरह से करने लगते हैं। तो अगर वो बच्चा मेडिटेशन करता है बचपन से, छोटी उम्र से, और सही ढंग से वो उसको जीवन में लाता है, अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करता है, तो खुद में एक बैलेंस्ड व्यक्तित्व का विकास होता है, और वो व्यक्ति फिर वो परिस्थितियों को
जी।
अपनी, वो बच्चा खुद अपनी स्वस्थ से आने वाली परिस्थितियाँ, परीक्षाएं, परीक्षा कैसे, परीक्षा का मतलब क्या है, परीक्षा शब्द कहाँ से आया, पर इच्छा,
ओके,
परीक्षा से शब्द बना परीक्षा, तो परीक्षाओं में पास होने लगता है। दूसरा क्या चाहता है मुझसे, मेरे पेरेंट्स मुझसे क्या चाहते हैं, ये भी तो परीक्षा है ना,
करेक्ट, बिल्कुल,
मेरा साथी मुझे, मेरा फ्रेंड मुझसे क्या चाहता है, या मेरे टीचर मुझसे क्या चाहते हैं, वो उसमें पास सहज हो पाता है। तो मैं समझता हूँ इसमें अगर मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है, जो बचपन से हमारे वो वैल्यूज हमारे अंदर लगती हैं, क्योंकि हम जब मेडिटेशन करेंगे उसको प्रोलॉन्ग करेंगे तो बच्चे का खुद का आभा मंडल बड़ा होने लगता है, और बच्चा जहाँ भी जाता है क्लास में भी जाता है तो उसके आभा मंडल में बच्चे उसके हिसाब से बदलने लगते हैं, उसके ऊपर पीयर प्रेशर नहीं फील हो सकता है बच्चा, बल्कि बच्चे उसके कॉन्टैक्ट में आके बदलने लगते हैं और बच्चे उसकी तरफ उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, ना कि वो बच्चा दूसरों से इम्प्रेस होने लगता है।
Correct.
वो एक सूरज की माफिक हो जाता है, अपनी पूरी क्लास में वो सूरज की माफिक चमकता है।
How beautiful.
वो एक चांद की माफिक चमकता है
जी।
और दूसरे बच्चे वो दूसरों से प्रभावित नहीं होता, दूसरे बच्चे उससे प्रभावित होते
हैं,
तो पीयर प्रेशर का इफेक्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो अगर बच्चा सही ढंग से बचपन से अपने मेडिटेशन करे, मैं खुद को लुक बैक करता हूँ अपनी लाइफ में तो मैं देखता हूँ मैं बचपन से मेडिटेशन करता था, क्योंकि मेरे फादर मदर शुरू से मेडिटेशन करते थे।
करेक्ट।
तो मैंने बचपन सीखा था, मैं सेंटर पे जाता था, हम लोग जाते थे, मुरली भी सुनते थे कभी कभी, तो मुझे मैंने देखा मैं अपने क्लास में अलग था, मुझे कभी किसी का असर नहीं पड़ा, मेरा असर दूसरों को पड़ता था।
वाओ।
तो ये जो है एक अलग ही लाइफ थी, जैसे भले मैं अकेला था तो मेरी लाइफ का असर दूसरों पर पड़ता था, मुझे लोग मुझसे समझ नहीं आते थे, मेरे को किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी।
आई थिंक ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है डॉक्टर साहब। मुझे ऐसा लगता है कि जिस जर्नी की आप बात कर रहे हैं और यंग एडल्ट्स की अगर मैं बात करूं, तो उनके लिए खुशी उनके दोस्तों में है, उनके बेटर करियर में है, फाइनेंशियली स्टेबल होने में है, लेकिन एक पर्टिकुलर लाइफ तरीका है जो मैं जीना चाहता हूँ और वो भले ही लोगों से अलग है। तो मुझे लगता है कि वो जो अलग रहना है वो कुछ लोगों को डर लगता है।
डर वहाँ लगता है, अकेलेपन वहाँ लगता है जहाँ पर आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ नहीं है। राइट। कोपिंग एबिलिटी नहीं है,
क्योंकि आपको ऐसा लगता है मैं फॉलो कर पाऊंगा या
नहीं कर पाऊंगा।
करेक्ट।
वहाँ पर डर लगता है जहाँ आप आउटर सेल्फ कॉन्शियस है, बॉडी कॉन्शियस है, रोल कॉन्शियस है
जी।
इसकी वजह जब इनर सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं तो आपके पास इतनी शक्ति आती है, इतनी आभा मंडल आपका बड़ा हो जाता है कि आप पूरी क्लास में चमकते हैं, आपको टीचर सामने से देखता है पूरी आपका ही नाम लेता रहता है।
करेक्ट।
सारी क्लास आपका ही नाम लेती है, सारी क्लास आपकी इन केस ऑफ एनी हेल्प एनी सिचुएशन का सारी क्लास आपकी तरफ आती है।
करेक्ट।
आप अलग नहीं पढ़ते हैं बल्कि सारा क्लास आपकी तरफ आता है।
डॉक्टर साहब, क्या ये हमारे मेडिटेशन जो है, क्या ये हमारी एकेडमिक्स पर या हमारे करियर पर भी असर डालता है? क्योंकि मुझे जितना पता है कि सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, ज़रूरी नहीं है, बिकॉज मैं खुद एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं रह चुकी हूँ, तो हर व्यक्ति के लाइफ में लाइक एक स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है जिस तक वो पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या मेडिटेशन हमारी एकेडमिक्स पर भी असर डालता है?
यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मेडिटेशन से क्या होता है कि हमारे अंदर, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि सभी के सभी एक जैसे नहीं होते हैं।
करेक्ट।
कोई पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हैं, वैसे बहुत सारे बड़े आदमी बने हैं, महान व्यक्ति बने हैं जो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे।
करेक्ट।
वो पढ़ाई में फेलियर थे, उसके बाद बहुत अच्छे कवि बने, बहुत अच्छे साइंटिस्ट बने, बहुत अच्छे दार्शनिक बने, है ना, वो कभी क्लास में गए नहीं।
करेक्ट।
वो दूसरी तीसरी क्लास में स्कूल छोड़ दिया या बार बार फेल होते गए, है ना
जी,
उसके बाद भी वो अच्छे बने। तो पढ़ना ही जीवन नहीं है या अकेडमिक्स ही बहुत जीवन नहीं है, तो हमें बच्चे के अंदर जो उसकी नेचुरल कला है
जी,
मेडिटेशन से वही निखरती है।
ओह वाओ।
जो मेडिटेशन उसकी कला, सपोज कि इसका डांस में कला है, किसी के एक्टिंग में कला है, किसी को कोई म्यूजिक में उसको गाना गाने का शौक है, उसको अंदर से है, पिछले जन्म में वो म्यूजिशियन रहा हो, संगीतकार रहा हो, सिंगर रहा हो, तो उसका वो संस्कार लेकर के आई है वो आत्मा, वो उसको वही चीज, कोई स्पोर्ट्समैन रहा, मान लीजिए क्रिकेटर रहा है पहले जन्म में, इस जन्म में उसने बच्चे ने जन्म लिया है।
हाँ, इसीलिए शायद जो क्वालिटीज हम देखते हैं बच्चों के अंदर में कि उनको कुछ एफर्ट्स ही डालने की जरूरत नहीं पड़ती,
बच्चा शुरू से उसमें बहुत इजी होता है।
वाओ।
डांस करना है तो उसको डांस करना बहुत इजी लगता है।
ओके।
और कई लोगों के लिए जिसने डांस पेशे जन्म में किया है उसको डांस पेशे जन्म में बड़ा मुश्किल लगता है।
सही बात है।
राइट। तो हमें पेरेंट्स को हमें फर्ज है कि उसको बच्चे को उस नेचुरल क्वालिटी को बढ़ने दें, है ना। ज्यादातर पेरेंट्स बच्चे को यही समझते हैं कि एकेडमिक्स में अच्छे बच्चे मार्क्स ले रहे हैं
जी,
मेरा बच्चा फर्स्ट आ रहा है, दैट इज नॉट द क्राइटेरिया, दैट इज नॉट द सोल क्राइटेरिया।
करेक्ट।
हमें देखना है कि मेरे बच्चे की इंटरेस्ट कहाँ है। जैसे मैंने कहा 3 साल का बच्चा है, 4 साल 5 साल का बच्चा है, उसकी हम अटेंशन इंटेंशन देखें किस तरफ जा रहा है। तो बच्चे को हो सके तो उसी लाइन में लेके जाए।
करेक्ट।
वो हमें 10वीं क्लास में नहीं, हमें उसके पहले ही डिसीजन लेना होता है, ले लेना चाहिए ना। और एक बात और भी है, मेडिटेशन करने से एक फायदा और है, जैसे मैंने अपने जीवन में देखा, मैं मेडिटेशन करता था छोटेपन में ही, तो मेरी बुद्धि बहुत साइलेंट, बहुत फोकस्ड रहती थी, कंसंट्रेशन बहुत अच्छी थी, मेरी फोटोजेनिक मेमोरी थी। मैं तो जो चीज़ मैंने एक बार देख लिया मुझे भूलता नहीं था, पेज नंबर याद रहता था, लाइन याद रहती कौन सी लाइन में कौन सा क्या अक्षर लिखा हुआ है। तो मैं एग्जामिनर को कई बार लाइन बताता था कि फला पेज पे 2224 नंबर पेज पे छठी लाइन में ये बात जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखी हुई है। तो एग्जामिनर मतलब कन्फ्यूज हो जाता था कि इसको इतना कैसे याद है। उसमें मेडिटेशन का रोल था, 10 बजे सोना, सुबह 4 बजे उठना और सुबह 1 घंटा पढ़ना, 2 घंटा पढ़ना और दिन में भी 2 घंटा पढ़ना, बस 4 ही घंटा रोज पढ़ता था लगभग। मैंने इवन MD एग्जाम में भी मैंने यही 2-4 घंटा ही पढ़ा लगभग और उससे मैं टॉप किया। बेसिकली तो हमें यही समझना है बच्चे के पेरेंट्स को, एटीट्यूड क्या होना चाहिए बच्चों के प्रति।
करेक्ट।
और बच्चों का एटीट्यूड क्या होना चाहिए अपने प्रति, तो इस एटीट्यूड को हमें सही समझने की आवश्यकता है
जी।
और उसमें मेडिटेशन का बहुत रोल है, इस एज में मेडिटेशन की बहुत आवश्यकता है कि सही हम, क्योंकि अब हम एक बहुत बेहद वायुमंडल में जा रहे हैं।
बिल्कुल।
बच्चा अभी एक्सपोज हो रहा है पूरे संसार से, उसके पहले बच्चा अभी कहीं बाहर निकलता नहीं था। अब 16 साल का बच्चा को कंपटीशन भी देना है, कोचिंग के लिए भी जाना है, उसको बहुत सारे काम करने हैं, लोगों से मिलना भी है।
और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एज ग्रुप है इसे हम जरूर अगले एपिसोड में भी कवर अप करेंगे, ताकि हम उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, इसी टाइम पे वो डिफरेंट लोगों के साथ में मिलते जुलते भी हैं, साथ ही साथ उनके करियर डिसीजंस भी हैं, साथ ही साथ उनके लाइक एक्सपेरिमेंटेशंस जिसकी बात होती है वो भी है, साथ में फैमिली के साथ में भी डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस होते हैं। ये कई सारे और इश्यूज हैं जो हम अगले एपिसोड में कवर अप करेंगे। थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू फॉर योर वैल्युएबल टाइम। ओम शांति।
ओम शांति।
दोस्तों, हमने आज जाना कि जो यंग एडल्ट्स होते हैं उनकी ज़िंदगी आई वुड से बहुत ही एक्साइटमेंट से भरी होती है, क्योंकि वो एक ऐसा एज ग्रुप होता है जहाँ पर सब कुछ बदल रहा होता है, उनका करियर डिसाइड हो रहा होता है, उनके फैमिली के अंदर में भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने लगती हैं, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लगती हैं और आपको पूरी दुनिया को प्रूव करना होता है कि आप कुछ कर सकते हैं और आप भी कुछ बन सकते हैं। लेकिन मेडिटेशन, ट्रस्ट मी, अगर आपने अपनी ज़िंदगी का मेडिटेशन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया तो आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे ये जो सभी गुत्थियाँ हैं ये अपने आप सुलझने लगेंगी और आप महसूस करेंगे कि आप स्पेशल हैं, जो बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और सक्सेसफुल लाइफ के लिए स्पेशल बनना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।